الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی. صلو علی العبی صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی میں حاضر ہوا تو حاجی امین اگربتیاں جلانے اور یہ ماچس کی تیلی جلانے کا مسئلہ شروع کر دیا تھا، تو میں کھڑے کھڑے سن رہا تھا، تو میں آتا بیچ میں تو مسئلہ دور رہ جاتا، شاید غلط فہمی کا امکان بڑھ جاتا. تو واقعی مسجد کو بدبو سے بچانا یہ کمپلسری ہے، لازم ہے، اور مسجد کو بدبودار کرنا یا ایسا کوئی کام سی چیز جس سے مسجد میں بدبو آئے یہ حرام ہے. اب اس سے بچنا بڑا دشوار ہے. پوزیشن ایسی عجیب و غریب ہے. ابھی جیسے 14 شعبان المعظم غوثیہ حال اوپر آپ نے آپ دے چکے مثال. اچھا
میں ایک ذہن یہی بنا رہا تھا کہ ایک چیز ہم پر ہے نا، تو ایک ہم پر ہم کو علم سیکھنا ہے، تو میں نے یہی اتفاق سے وہ میں نے کہا دسترخوان ہمارا کھلا تو کچھ ہوا، کیا ہوا یہ پوچھا میں نے سب سے نا، کہ امیر علیہ سنت کے استعمال کا جو دسترخوان ہو تو بچ گیا، دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے فیضان مدینہ کا دسترخوان کھلا تو کچھ ہوا اس وقت، تو کیا ہوا؟ تو دو تین نے ہاتھ اٹھائے نا.
تو پہلی بجوائی اپنے
اس میں میں عرض کروں امیر علیہ سنت کے بارگاہ میں کہ شاید ایسا ہے کہ کئیوں کو یہ جو جس کو کہتے نا وہ بو، وہ شاید وہ اس کو وہ روٹین کی بو ہے کہ یہ تو ہوتی رہتی ہوتی ہے، چاہے وہ دری سے آئے دسترخوان سے آئے، لیکن طبیعت تو بابا بو کو تو محسوس کرے گی نا کہ یار یہ بو ہے.
اصل وہ عادی ہوتے ہیں نا بدبو سونگنے کے، جیسے وہ ٹیکا ہے نا ایک بھنگی پھرتا پھرا تھا عطر کے بازار میں آ گیا تو بے ہوش ہو گیا، لوگ اس کو مطلب ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان کا ذات بھائی نکلا وہ جانتا تھا، تو اس نے بولا میں اس کو ہوش میں لاتا ہوں ابھی آیا میں، تو وہ کچھ لے کر آیا اور اس کے ناک میں رکھا نا تو ہوش میں آ گیا. بولے یہ کس ہوش میں آ گیا، ایسی کون سی دوا سونگائی؟ تو اس نے بتایا اس کو میں نے گندگی سونگائی ہے، کیونکہ یہ گندگی سونگنے کا عادی ہے، عطر کا یہ عادی نہیں ہے. تو وہ عطر کی خوشبو پہنچی تو یہ بےچارا بے ہوش ہو گیا. تو اب جو مطلب ان بدبوؤں میں رچے بسے رہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، تو جن کی طبیعت میں نفاست ہو پاکیزگی ہو شاید ان کو زیادہ سمجھ آتی ہو، واللہ اعلم. اب میں پھر اس نتیجے پر پہنچا، میں نے کہا یہ ایک دسترخوان یہاں کھلا تو یہ حال ہوا، مسجد بالکل مسجد کا حصہ ساتھ میں، تو بدبو نے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے غالباً. تو اب پتہ نہیں رمضانوں میں کیا ہوتا ہوگا، میں تو وہاں ہوتا نہیں ہوں، اور اس کے علاوہ بھی جمعہ راتوں کو اور زیادہ دسترخوان تو وہ کھلتے رہتے ہیں، وہ جمعہ رات کو بند ہوتے ہوں گے، آنے والی جمعہ رات کو کھلتے ہوں گے، تو جس نے اندر مرنا ہوگا مر جاتا ہوگا، جس نے سڑنا ہوتا ہوگا سڑ جاتا ہوگا، پھر وہ کھلتا ہے تو بدبو تو آئے گی. تو اس کا حل ایک تو یہ کہ اچھی طرح صاف کر کے رکھے، چلو یہ اچھی طرح صاف بھی کرتے ہوں گے، اور وہ جس طرح کے وہ نہیں آتے کچھ لوشن وغیرہ جو فرش دلائی کے خوشبودار، اس میں بوڑ بوڑ کے بھگو بھگو کر इसको जैसे साफ करें, तो इसका मेल कुचल भी साफ हो जाएगा और बंद रखने के बाद बावजूद हो सकता है कि बदबू हो जाए इसमें। अब ये तजर्बा करेंगे तो पता चलेगा कि अगर इस तरह की चीज से हम इसको कपड़े से साफ कर लें अच्छी तरह, तो आया ये बंद करने से बदबू देता है या नहीं देता, ये आप रमजान से पहले ही ट्राई हो जाए, इसकी कल ही हो जाए ट्राई।
अब इसमें जो उस दिन जो बात आई थी ना, तो हमने आपस में मशवरा किया था, तो बाद अवकात क्या होता है कि जब गीला कपड़ा मारते हैं ना और गीला ही गीला उसको लपेट दिया, तो इसका तरीकाकार ये होता है कि इसको फैलाकर इसको हवा मतलब धूप लगे ना तो ये खुश्क हो जाता है। तो उमूमन हमारी रूटीन यही होती है, बाकी वो होता है कि बाद अवकात कोई एक आदमी ने इसको लपेट दिया। तो अब ये सारे आज मैंने देखे थे कि ये छत की तरफ जो है ना वो कुछ खोल के इन्होंने इसको रखा था ऊपर के, ताकि ये खुश्क हो जाए सारे।
असल इसमें ऐसा है कि इसको फिर भी बंद करेंगे ना तो बदबू तो आएगी, रेक्सिन चमड़ा इस तरह की चीजों में। अब इसको ये हर वक्त धूप में रहें ये मुमकिन नहीं है सर, कहाँ से लाएं? अगर धूप में बिछाएंगे तो चील कव्वे जो है वो अपना हिसाब किताब करेंगे, तो पहले से भी बदतर कर देंगे इसको। तो या तो ये कि ऐसी जगह हो हमारे पास फाजिल कि ये रस्सियों पे यूं लटके रहे, ये मुमकिन नहीं है जो लंबे लंबे दस्तरखान हम रस्सियों पे लटकाएं। तो इसका एक हल ये है कि जैसे मगरिब की नमाज में ये नमाज के बाद हम इसको बिछाएंगे, तो जहन नसीब असर के बाद ये मस्जिद के बाहर जाकर इसको खोला जाए, अंदर खोलेंगे तो बदबू तो आएगी, अंदर मस्जिद के बाहर उठा उठा के ले जाए इसको खोलें, खोलेंगे बिछाएंगे तो ये बदबू इसकी निकल जाएगी। फिर मगरिब के बाद इफ्तार में जब इसको ले आएंगे वापस तो अल्लाह करेगा तो बदबू नहीं होगी, लेकिन फिर बाहर की धूल मिट्टी जो बस दस्तरखान पे चिपकेगी वो अंदर घुस जाएगी। ये सारी चीजों से इसको बचा कर लाना है ये काम। अब सवाब करना है तो काम तो करना होगा, अब अपनी बिल्कुल अंधी चलाएंगे तो दिल को मना देंगे कि हम एहतिकाफ वालों की खिदमत करते हैं, तो ये खिदमत एहतिकाफ वालों की तो हो गई, लेकिन अपने पल्ले अगर गुनाह बंध गए तो मस्जिद में बदबू तो दाखिल होगी, कोई हो या ना हो मस्जिद को बदबू से बचाना ये वाजिब है। मस्जिद में फरिश्ते भी होते हैं, जिस तरह इंसान को बदबू से तकलीफ और खुशबू से फरहत और लुत्फ आता है, इसी तरह फरिश्तों को भी बदबू से तकलीफ और खुशबू से फरहत और लुत्फ महसूस होता है।
क्योंकि फैदान मदीना और इतिकाफ में सुबह शाम दोपहर रात हर वक्त साउंड की जरूरत पड़ती है
जी,
और साउंड के हवाले से जरूरत भी है, इस टाइम भाइयों तक आवाज पहुंचानी भी है और उनको सोने भी देना है।
माइक अजान में खुलता है, फिर हमारे यहाँ तस्वीब भी दी जाती है उसमें खुलता है, तकबीर इकामत फिर नमाज दुआए सानी। अच्छा, अब रमजानों में बयानात भी होंगे तो आम तौर पे बयान में तो माइक मेरा ख्याल फुल साउंड खुलेगा रमजान के दिनों में कि गैदरिंग होती है। अब इसमें यह देखना पड़ेगा कि लोग अगर नमाज पढ़ रहे हैं, ये बड़ी आजमाइश है, जब लोग नमाज पढ़ रहे हो तो साउंड बंद रखना पड़ेगा, यानी ऐसी आवाज ना हो जिससे नमाज पढ़ने वाले को तश्वीश हो। अब ये जो भी माइक के जो जिम्मेदार होते जा रही है वो उस वक्त मस्जिद में तो नहीं होते होंगे, तो अपने साउंड रूम में होते होंगे, तो वहां से इन्होंने तो अपने तौर पर जो एक तरकीब इनको मिली हुई है उसके मुताबिक करेंगे, तो इसका हल कोई है अपने पास?
असल साउंड वाले एक इस्लाम भाई जो साउंड ऑपरेटर समझे जो देख रहे हैं, और उनके नुमाइंदे जो हैं वो मस्जिद के अंदर भी होते हैं और मेहराब में भी होते हैं, जैसे हमारा बराह रास्त मदनी मुजाकरा भी हो रहा है तो साउंड के एक नुमाइंदे की जिम्मेदारी होती है कि वो वहां मेहराब के अंदर होगा, और काम भी होते होंगे उनके, ये काम भी है और उनका नीचे उनका जो है वो राबता भी होता है, उसका भी इनके पास इंतजाम होता है, तो बाहर मस्जिद के ताल्लुक से भी और ऊपर मेहराब के ताल्लुक से भी इस्लामी भाई होते हैं जो दौराने बराह रास्त सिलसिलों के दौरान या जो भी सिलसिले उसमें आपस में ये रابطے में रह सकते हैं और रहते भी हैं।
मैं उसके लिए नमाजें जब लोग पढ़ रहे होते हैं ना, अब ये हुक्म शरीयत, क्योंकि मस्जिद है नमाज पढ़ने वालों के लिए, नमाज वालों को ये कह भी नहीं सकते कि दूसरी मस्जिद में जाके पढ़ लो, इसकी भी शरीयत ने हुमानत है ही नमाजियों की मस्जिद। अब हम जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो वो उसी सूरत में हमारे लिए जायज होंगे जबकि किसी नमाजी को तशवीश और परेशानी ना हो, ये हुक्म शरीयत है। इसका बड़ा खून होता है, बारहा खून होता है इसका। जैसे फजर के बाद माइक चलाने की मुमानत है, हाँ फजर के बाद जब बयान होता है ना तो उस वक्त तो इजाजत है कि चलो भाई बयान हो रहा है वो सब सुन रहे हैं, अब इसके बाद माइक बंद, कोई सो रहा है, कोई इशराक पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये मर्द के बच्चे लगे होते हैं, तो इसलिए ये माइक पर जो भी इस्लाह भाई जिम्मेदार होते हैं ना, ये जब देख लेना कि नमाज कोई एक इस्लाह भाई भी नमाज पढ़ रहा है तो थोड़ा माइक को हल्का करवा दे, ऐसा कि उसको तशवीश ना हो। ये अलग बात है, नमाज पढ़ने वाले को भी ताउन करना चाहिए कि मस्जिद बहुत बड़ी है, कहीं ऐसी जगह जाके साइडों पे पढ़ ले जा, ये सिलसिला भी चलता रहे, लेकिन अगर वो नहीं है, बीच में लग गया, शुरू हो गया, तो हमको फिर उसका एहतराम करना होगा, ख्याल रखना होगा
इंशाल्लाह।
इसी तरह तिलावत करने वाले, ये भी इबादत है, इनको भी हम परेशान नहीं कर सकते, चुपचाप जो कुरान करीम की तिलावत कर रहा है इसको हम ये तो बोलने से लगे जाके घर पे पढ़ो, अल्लाह का घर ये तो पढ़ेगा, सबको लेके साथ चलना है और हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये मसाइल सिर्फ एहतिकाफ के नहीं है, ये फॉर एवर, ये हमेशा के लिए मस्जिद में इन बातों का ख्याल रखना है। ये अपने मगरिब की नमाज के बाद यासीन शरीफ, यासीन शरीफ पढ़ रहे हैं कि सूरतुल मुल्क, दोनों पढ़ रहे हैं, यासीन शरीफ और सूरतुल मुल्क की तिलावत ये बगैर माइक के करनी होती है, फिजान मदीना में हल्के यही हल्के लगाने होते हैं, तो इसमें माइक नहीं चलाना है। अच्छा फिर यह कि बात बात पे साहब भाई आके बोलते होंगे आवाज छोटी करो आवाज बड़ी करो, इसका भी कोई सिस्टम बनाए कि कौन बोले तो आवाज छोटी बड़ी करे, आवाम तो बोलेगी यहाँ आती है और यहाँ जाती है आवाज।
जैसे इन्होंने ये जो राउंड वाले इस्लाम पे रखे ना, तो इस मामले में हमारा एक टेंशन कम हो गया है,
तो राउंड वाले को बोले
ये नहीं, ये खुद ही देखते हैं इसको। अच्छा। इनको जहाँ कम महसूस होती है, ये अपने अपना जो इनका सिस्टम है ना, उसी के तहत ये साउंड से डायरेक्ट रब्ता रखते हैं।
अच्छा।
और रमजान शरीफ में इनकी भी शिफ्टें होती हैं, जो जो हमारा मेन इवेंट होता है इसमें ये साउंड वाले जो है वो हर तरफ, यानी जैसे अगर हम यहाँ होंगे तो साउंड के जो जिम्मेदार है वो मुआविन यहाँ होंगे, अगर ऊपर हो रहा होगा मदनी मुजाकरा तो मस्जिद में अलग साउंड के जिम्मेदार होते हैं, बाहर सहन में अलग होते हैं, तो इस तरह से इन्होंने कुछ अपने अफराद बढ़ा दिए तो इससे हमें भी आसानी हो गई। हाँ कभी अगर हमको महसूस होता है तो हम मैसेज कर देते हैं इनको कि जरा चेक करवा लें, तो ये वहां जाकर उसको चेक करवा लेते हैं कि बाद वो स्पीकर खराब हो गया तो उसको हाथों हाथ चेंज भी करवा देते हैं।
अच्छा ये फजर के बाद जो हमारे मदनी हल्का लगता है
जी,
उसमें माइक
पूरा चार्ट बना कर दिया है, साउंड वालों के पास जो है ना वो मुख्तलिफ वो हिस्से बनाए हैं, गौसिया हाल, रमजान हाल, रजा हाल, मिलाद हाल, सहन, फिर इसी तरह फैजान मदीना, एन ए मस्जिद, पहली मंजिल, और इनको हमने लिख कर दिया है कि जब अजान होगी तो इसी साइड के स्पीकर खुलेंगे और इकामत होगी तो ये साइड खुलेगी, तो ये सारा हमने इनको चार्ट बनाकर दिया हुआ है।
पर नमाजियों को तशवीश न हो, फिर मोतकफीन को भी परेशानी न हो, मोतकफीन है ना इसमें तादाद भी बिल्कुल अनगढ़ होते हैं, ये कहाँ कहाँ से आए हुए होते हैं, अब इसमें इनको अगर कोई तकलीफ होती है ना तो फिर ये या तो चले जाते हैं, और जो चला गया वो खुदा जाने दावत इस्लामी के बारे में क्या तासुरात, मदनी मरकज के बारे में क्या तासुरात बाहर जाकर बयान करता होगा। अरे वो लोग तो बोलेंगे ना तू तो इत्तेकाफ के लिए गया था, आ कैसे गया, तो फिर ये जो किससे सुनाता होगा ना, तो वो सोचने की बात है किस तरह फिर लोग जो है वो दीन से दूर होते होंगे। इसलिए अखलाकियात में भी बहुत एहतियातें करनी है, वो झाड़ना, और बल्कि अगर नो लिफ्ट भी करेंगे ना तो अगला बदजन होगा। जो भी कोई बात करे पूछे उसको लिफ्ट भी करानी है, मुस्कुरा कर उसको डील करना, अपना उसूल फिर भी नहीं छोड़ना। अब जैसे के हमारे हारिसीन होते तो ये चेकिंग के ताल्लुक से इनको बिल्कुल रियायत की इजाजत ही नहीं है। चेकिंग तो पूरी करनी करनी है, वो चाहे कुछ भी बोले उसको तो करना है, लेकिन झाड़ना नहीं है, गुस्सा नहीं दिखाना। वो मुस्कुरा कर करके चेकिंग करके जिनकी ड्यूटी है फिर उसके कान में बोल दे वेरी सॉरी, तो यूं थोड़ा बंदा ठंडा हो जाता है, भाई माफ करना जरा हमारी ड्यूटी है। तो ये थोड़ा गुस्से में भी होगा तो ठंडा हो जाएगा।
कौन बोलेगा वेरी सॉरी?
एयरपोर्ट पे जब नौकरी करेंगे तो सीख जाएंगे बोलना, कि जरूरतन वो लोग तो बोलते होते हैं और चेकिंग पूरी करते हैं।
कौन बोलेगा, क्या बोलेंगे?
वो एयरपोर्ट पे मेरा तो अपना कुछ इस तरह वास्ता पड़ा है ना, चेकिंग करेंगे फिर बोलेंगे मौलाना दुआ में याद रखना, यहां तक मेरे को तजुर्बा, मैं अत्तारी हूं। चेकिंग करेंगे क्योंकि इनकी चेकिंग हो रही होती है, ये छोड़ नहीं सकते। तो ये जो होना चाहिए चेकिंग, मिनिस्टर आए प्राइम मिनिस्टर आए चेकिंग उसकी होनी चाहिए, फिर ठीक है उसके मोहब्बे के मुताबिक, उसके जो भी मनसब के मुताबिक हम सॉरी वगैरह कुछ भी कर लें। तो आम भी यहाँ मस्जिद में जो आता है ना, ये सही बोलता हूँ कि उसका एहसान है कि आता है। हमारी मस्जिद में आना आसान नहीं है, खासकर इस खास मौके पर इतनी देर तक लाइन में लगकर ये बड़ी मुश्किल से मतलब पहुंचे आप तक, और आप फिर इसमें तजल्ली डालो तो ये बेचारा क्या करेगा। इसको तो मान देना है, प्यार देना है, मान देना है, पूरा काम करके ताकि इसको बुरा भी ना लगे।
या सैयदी, हिफाजती उमूर के हवाले से कुछ सवालात अर्ज करने थे। तो हिफाजती उमूर वालों को, हमारे इस्लामी भाइयों को बड़ी आजमाइश का सामना होता है, वो इस तरह का कि रमजान हाल, मिलाद हाल और दीगर जगहों पर जहाँ पर चेकिंग के मामूलात हैं, इस्लामी भाई बड़ी धक्कम धक्का होती है, बड़ी बदतमीजियां भी करते हैं, हमारे इस्लामी भाई वो बर्दाश्त भी करते हैं, सब कुछ करते हैं।
मैं मशवरा दूं उसको माफ कर दूं, आप माफ कर दें, माफ करना, माफ करने वाला मतलब नुकसान में नहीं रहता, उसकी इज्जत कम नहीं होती, उसकी इज्जत बढ़ती है। मैंने तो अपने कातिल को भी अपना जाती हक माफ किया हुआ है, मेरा वसीयतनामा, मेरे तो सुने होंगे मेरे बारे में तो, कि मुझे कोई मारे गालियां दे कुछ भी करे, मेरी तरफ से उसको माफ। तो बेटे दिल बड़ा रखें, दिल बड़ा रखें, और आप चूंकि आपकी चूंकि ड्यूटी है तो आपको अपनी ड्यूटी पर रहना है, और आपका अपना अंदाज चाहे वो मारे चाहे कुछ करे, आपको गुस्सा नहीं करना होता है। बहुत पुरानी बात मैं मिसाल दिया करता हूं कि मैं एक बार आशूरा था, अपने घर की बालकोनी में खड़ा हुआ था मैं, तो वो कुछ लोग भाग रहे थे, पुलिस उनके पीछे थी। अब पुलिस दूर थी, ये भागते भागते किसी ने इतना बड़ा पत्थर पुलिस की तरफ फेंका, तो एक सादा ड्रेस में था उसने वो पत्थर कैच कर लिया। मैं हैरान रह गया, यार ये पत्थर से कैच कर लिया, इसके हाथ लोहे के हैं क्या? जैसे इतने मजबूत आदमी है, अब तो निशाने का भी ऐसा पावरफुल होगा, नहीं मारना और बंदे ने गिरना है नीचे, लेकिन उसने यूं कैच किया, मारा नहीं, साइड पे फेंक दिया। अच्छा, फिर किसी ने बताया मुझे बाद में, मैंने हैरत से वाकया बताया, मैंने यार मेरी आंखों ने ये देखा, तो बोला वो एसडीएम था, इन्हें ये कोई अफसर था। फिर मेरा जहन बना के यार हरेक का अपना अपना मतलब है, देखे मनसब होता है, वो कोई छिछोरपन उसने की पत्थर मारा, ये उसका मनसब था, वो मार के भाग गया, और इसका मनसब था कि इसने कैच किया, अगर ये पत्थर मारता ना कानून इसको पकड़ लेता। ये पुलिस के पास जैसे के वो आंसू गैस और सब होता ना, ये मारते नहीं है जब तक इनको इजाजत नहीं मिलती, फायर नहीं खोलते, ये चाहे कितनी फायरिंग हो रही हो ये फायर नहीं खोल सकते, इनको जब तक इजाजत नहीं मिलती इनके अफसरों की, जो भी इनकी सिस्टम बना होता है। तो इसी तरह जैसे हारिसिन खादिम इनके साथ किसी ने बदतमीजी की ना, तो इनको हमारी मजलिस की तरफ से इजाजत नहीं है कि ये इसके साथ बदतमीजी करें। तो इनमें और आप में फर्क क्या रहेगा? ये तो अवाम है बिल्कुल। ये आते हैं, मैंने कहा इनकी मेहरबानी है कि ये मस्जिद में आते हैं यार, आजकल तो हालात ऐसे हैं, इनका एहसान है। तो इनके साथ अगर इनकी शिद्दत पर भी हम नरमी करेंगे ना, तो ये शर्मिंदा होंगे और इंशाल्लाह मतलब ये कि इनकी तरकीब बेहतर बनेगी।
प्यारे बाबा जान, कोई ऐसी दुआ फरमा दीजिए। ये इस्लामी भाई हिफाजती उमूर के आप तो जानते हैं, ये धूपों में भी खड़े होके बैरियरों पे भी होते हैं और धूपों में खड़े रहते हैं, क्योंकि इनके सर पे बैरियरों के ऊपर तो कोई छतरी वगैरह कुछ भी नहीं होती, गर्मी कैसी है। कोई ऐसी दुआ फरमा दीजिए ताकि इन इस्लामी भाइयों को तसल्ली हो जाए और इंशाल्लाह उस दुआ की ही धुन में झूमते रहें और मदीने की यादों में घूमते रहें।
वाह भाई वाह।
पापा इनको इनको भी कभी किसी दिन मदनी मुजाकरा भी दे दें और इनको फिर मदनी मुजाकरा में मुलाकात भी दे दें।
सुभान अल्लाह।
सारे हारिसिन खादिम,
सारे हारिसिन खादिम इनको भरपूर एक मदनी मुजाकरा हो,
हिफाजती उमूर की छुट्टी
कमोबेश। पापा वो किसी
खतरा खलास।
पापा मंगल बुध को कर लेंगे ना, आपने कहा
मंगल बुध को खतरा नहीं होगा।
कुछ कुछ करे बाबा, ये जितने आ जाए सबको मदनी मुजाकरा हो और फिर सबकी मुलाकात हो जाए आपके साथ, सबको ईदी भी मिल जाए।
माशाल्लाह। आप भाई धूप से बचने का कोई इंतजाम नहीं किया आप लोगों ने यार?
कि इसमें भी बाबा खैरख्वाही हो कि जैसे बास हमने इदारों में देखा है कि वो थोड़ी थोड़ी बस शिफ्ट चेंज होती है, तो एक ही को मतलब उन्हें काले पानी की सजा कि वो
नहीं। आई साहब ऐसा नहीं है, एक घंटे बाद शिफ्ट चेंज होती है, पूरी पूरा राउंड चलता है एक घंटे के बाद, और ये वहाँ पे छतरियां भी लगी हुई है।
हाँ, एक घंटा भी धूप में खड़ा रहना मतलब वो इन
मतलब
दिनों में
तीन इस्लामी भाइयों की ड्यूटी होती है बैरियर पर एक घंटे के लिए, तो तीन मतलब तीन इस्लामी भाई जो ना एक घंटे के अंदर 15-20 मिनट एक बैरियर चलाएगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरा चलाएगा।
अच्छा। हाँ भाई
जी जी बापा जान ऐसे ही है।
हाँ तो फिर क्या है?
नहीं ऐसे ही है, लेकिन तो दुआ की याद कर रहे हैं, काम से नहीं कतरा रहे बापा जान,
मतलब अल्लाह आपको हज नसीब करे।
आमीन।
यानी कि यार मीलों मील धूप में चलना पड़ेगा, प्रैक्टिस यहाँ प्रैक्टिस कर लो, धूप में खड़ा होना, धूप में सोना भी पड़ेगा मीना शरीफ में, मैं सोया हूँ। हाँ तो वहाँ तो धूप ही धूप, मीना शरीफ में
तो नंगे पाँव,
नंगे पाँव धूप, वो अपने मैदान अराफात कैसी धूप शरीफ होती है।
अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत अच्छा निजाम हो गया हमारे हिफाजती उमूर का, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन निजाम हो गया है। बस हम भी दूसरों की तरह जैसे दूसरे इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास तशरीफ लाते हैं, दुआएं ले लेकर जाते हैं और हम उनको भेजते हैं, हसरत की निगाहों से देखते हैं वो दुआएं, उन दुआओं में हमें भी शामिल कर लिया कीजिए बापा जान। बस ये
माशाल्लाह
उनकी आंखों को देखते होंगे कि ये पीर साहब को देख कर आ रहे हैं, इन आंखों ने मुर्शिद की ज़ियारत की है।
बापा जान सब के सब मुंतजिर हैं आपकी दुआ के।
या अल्लाह ये जितने भी हमारे हारिसीन आए नहीं आए खादिमीन सबको इससे पहले मौत न दे जब तक ये हाजी ना हो जाए।
तो आमीन।
हाजी भी हो जाए मदीना भी देख ले।
इमरान अतारी जमदम नगर। मुर्शिद करीम पिछले 2 सालों में मैंने 10 दिन का यहाँ एतकाफ किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। अगले जो 17 और 18 भी आ रहा है एतकाफ ना कर सका, लेकिन मैं आता रहा। जो मैंने एक कमी महसूस करी शिद्दत से, मैं कई मरतबा अपने साथ साथियों को लेकर आया। दिल ये कहता है कि कोई ऐसे साथियों को हम उनसे मिलवाएं कि जिनसे उनका दिल मुतमईन हो जाए, जख्मी हो जाए, और वो जिन मोहब्बत से हम उनको लाए हैं वो मोहब्बतें उनके दिलों में उतर जाएं।
सर तादाद बहुत ज्यादा होती है और इनमें जिम्मेदारान भी होते हैं, मिलनसार इस्लामी भाई भी होते हैं, मुबल्लिगीन भी होते हैं। अब ये कि चूंकि हजारों की तादाद होती है, अब इसमें आपको कैसे पता चले कि किससे लाकर मिलवाना है? ये हमारा बहुत पुराना ये दर्द है, ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। ये हजारों की तादाद में होते हैं, اللہ آپ کو مدینہ دکھائے.
آمین.
حج کیا آپ نے, عمرہ کیا, کچھ بھی نہیں کیا نا. وہاں جو آدمی جاتا ہے محبت لے کر جاتا ہے, وہاں کون کس کو پیار دیتا ہے, وہاں کون کس کے دکھ بٹاتا ہے. تو اس طرح آپ مطلب یہ ذہن بنا کر لائیں کہ دیکھو ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں اور عبادت کرنے جا رہے ہیں, وہاں ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ یہ کہیں نہیں کہ وہاں اخلاق کے دریا بہتے ہیں, روشن اخلاق کے چشمے ابل رہے ہوتے ہیں. آپ ایسا ذہن بنا کر آئیں گے تو پھنسیں گے. اپنے عبادت کرنے جاتے ہیں, وہاں اپنے کو تکلیفیں اٹھانی ہیں. حج میں بھی تکلیفیں اٹھاتے ہیں, ہے نا, سفر حج میں تکلیف ہی تکلیف ہے, بہت تکلیفیں ہوتی ہیں. تو ہم کو وہاں جا کر تکلیف اٹھانی ہے, اور ہمیں جتنی تکلیف زیادہ ہوگی انشاءاللہ ہم کو ثواب زیادہ ملے گا. اب یہ ذہن بنا کر آئیں, پھر کسی نے مسکرا کر دیکھ لیا تو یہ سمجھو کہ بونس مل گیا.
مرشد کریم آپ محبتوں کے جام پلا رہے ہیں.